वेदांग वेदों के सहायक शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदस और ज्योतिष इन छह शास्त्रों को वेदांग कहा गया है। जिस प्रकार अंग विहीन शरीर असंभव है उसी प्रकार इन छह अंगों के अध्ययन के अभाव में वेदाध्ययन असंभव है। वेदों के शुद्ध पाठ अर्थ ज्ञान यज्ञों में मंत्रों की उपयोगिता यज्ञ के लिए उचित समय का ज्ञान तथा वेदी निर्माण की सही प्रक्रिया का ज्ञान वेदांगों के अभाव में संभव नहीं है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि ज्योतिष वेदों के लिए आँख है, निरुक्त कान है, शिक्षा घ्राण है, व्याकरण मुख है, कल्प हाथ है तथा छंद पाँव है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिष्मायनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार जैसे आँख कान नाक मुख हाथ तथा पांव से शरीर में पूर्णता रहती है उसी प्रकार इन षड वेदांगों के अध्ययन से वेदाध्ययन में परिपूर्णता आती है। अब क्रमशः वेदांगों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। एक शिक्षा षड वेदांगों में शिक्षा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रथम वेदांग है, इसको वेदों की नासिका कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य यह शुद्ध उच्चारण का शास्त्र है। स्वर वर्णोच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा जिस शास्त्र में मंत्रों के स्वर एवं व्यंजनों के शुद्ध उच्चारण को जाना जाता है वह शिक्षा कहलाता है। स्वर तथा व्यंजनों का ठीक ठीक उच्चारण ही मंत्रों के वास्तविक अर्थ का अवबोधन कराता है। यह शास्त्र यद्यपि अत्यंत प्राचीन है परंतु इस पर लिखे ग्रंथों की संख्या अत्यल्प है। एक अनुश्रुति के अनुसार जैगी शब्य के शिष्य वाव्रव्य इस शास्त्र के प्रवर्तक हैं। ऋग्वेद के क्रम पाठ की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। महाभारत शांति पर्व के अनुसार आचार्य गालव ने एक शिक्षा शास्त्री ग्रंथ का निर्माण किया था। अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से भारद्वाज शिक्षा का प्रकाशन हुआ है जिसके रचयिता भारद्वाज मुनि माने जाते हैं। वेदों के शाखा भेद के कारण शिक्षाएं भी विविध प्रकार के उच्चारण विधानों को प्रस्तुत करती हैं। पाणिनि ने एक शिक्षा ग्रंथ का प्रणयन किया था जो पाणिनीय शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध नाम से प्राप्त है। वाराणसी से शिक्षा संग्रह नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है जिसमें अनेक शिक्षाएं एकत्र संग्रहित हैं। प्रत्येक वेद की अलग अलग शिक्षाएं हैं। आज केवल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य शिक्षा, सामवेद की नारद शिक्षा, अथर्वेद की मांडुक की शिक्षा ही सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध होती है। इनके अतिरिक्त भी नारदीय शिक्षा, गौतम शिक्षा, केशवी शिक्षा, लघु अमोघानंदिनी शिक्षा, आपिशली शिक्षा, वर्ण रत्न प्रदीपिका शिक्षा इत्यादि अनेक शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। ध्वनि का आरोह अवरोह, उच्चारण की शुद्धता, उच्चारण की कालावधि का परिसीमन आदि शिक्षा के मुख्य विषय हैं। इसके वर्ण विषयों में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान इन छह तत्वों की गणना की जाती है। वर्णों के उच्चारण स्थान प्रयत्न आदि के अतिरिक्त साम अर्थात श्रुति मधुर पाठ तथा संतान अर्थात संधि को भी कतिपय शिक्षा ग्रंथों में विवेच्य विषय बनाया गया है। प्रातिशाख्य ग्रंथों को भी इसी वेदांग में रखा जाता है। कल्प षड वेदांगों में दूसरा वेदांग कल्प नाम से प्रसिद्ध है। कल्प का मुख्य विषय है धार्मिक कर्मकांडों का प्रतिपादन, यज्ञों का विधान और संस्कारों की व्याख्या। इससे संबंधित ग्रंथ सूत्र ग्रंथ कहलाते हैं। जिन ग्रंथों में कल्प अथवा यज्ञ विधान संग्रहित है उन्हें कल्प सूत्र कहते हैं। इनके चार विभाग हैं श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र तथा सुल्व सूत्र। श्रौत सूत्रों में श्रौत यज्ञों का विवेचन है। श्रौत यज्ञ दो प्रकार के हैं, सोम संस्था तथा हवि संस्था। गृह सूत्रों में गृह यज्ञों का विधान है, इसे पाक संस्था कहा जाता है। इन तीनों प्रकार के यज्ञों के साथ षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम हवि संस्था के प्रकार हैं। अग्नाध्येय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास और पशुबंध पाक संस्था के प्रकार हैं। सायम होत्र, प्रातर होत्र, स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका। कुल मिलाकर कल्पसूत्रों में 42 कर्मों का प्रतिपादन है। 14 श्रौत यज्ञ, 7 गृह यज्ञ, 5 महायज्ञ और 16 संस्कार यज्ञ। गृह सूत्रों में घरेलू यज्ञों तथा परिवार के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्यों का उल्लेख है। गृह सूत्रों के तीन भाग हैं, प्रथम में छोटे यज्ञों का वर्णन है, दूसरे भाग में षोडश संस्कारों का वर्णन है, तीसरे में कतिपय मिश्रित विषय हैं जैसे गृह निर्माण संबंधी कर्म, श्राद्ध कर्म, पितृयज्ञ तथा अन्य लघु क्रियाएँ। कौशिक गृह सूत्र में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियों को दूर करने के उपाय का भी समावेश है। इसकी भी संख्या वेदों की शाखाओं पर आधारित है। ऋग्वेद से संबंधित सांख्यायन तथा आशुलायन गृह सूत्र, सामवेद से संबंधित गोभिल, खादिर और जैमिनी गृह सूत्र, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित पारस्कर गृह सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस तथा अथर्वेद से संबंधित कौशिक गृह सूत्र प्राप्त होते हैं। धर्मसूत्रों में यज्ञों का वर्णन न होकर धार्मिक आचारों तथा व्यवहारों का वर्णन प्राप्त होता है। धर्मसूत्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। साथ ही राजा, व्यवहार के नियम, अपराध संबंधी तत्व, विवाह, उत्तराधिकार, अंत्येष्टि क्रियाएँ, तपस्या के नियम आदि विषयों का भी समावेश है। प्रसिद्ध धर्मसूत्र 5 हैं, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, बौधायन, गौतम और वशिष्ठ। शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदी निर्माण की प्रक्रिया का विवेचन हुआ है। विभिन्न प्रकार की वेदियों के निर्माण की विधि रेखा गणितीय आधार पर बतलाई गई है। भारतीय रेखा गणित के मूल सूत्र इन्हीं ग्रंथों में प्राप्त हैं। शुल्ब का अर्थ है धागा। यज्ञ वेदी का निर्माण धागे द्वारा ही नाप कर किया जाता था, इसलिए इन ग्रंथों का नामकरण शुल्ब सूत्र किया गया। व्याकरण, वेद पुरुष का मुख व्याकरण कहा गया है। वेदांगों में इसका अति महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों में प्रकृति प्रत्यय आदि का निर्धारण करके अर्थ बोध कराना व्याकरण शास्त्र का ही कार्य है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम्। किस शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है तथा तदनुरूप शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, इन तथ्यों का सही ज्ञान व्याकरण के अध्ययन के अभाव में संभव नहीं है। किसी ने तो यहाँ तक कहा है कि बहुत पढ़ने के बाद भी व्याकरण का पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा सकृत, विष्ठा तथा सकृत एक बार में, सकल संपूर्ण तथा सकल खंड में, स्वजन, आत्मीयजन तथा स्वजन कुत्तों में भेद करना कठिन हो जाएगा। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा भूत सकलच्छकल सकृच्छकृत। व्याकरण की परंपरा वैदिक काल से ही चली आ रही है, परंतु सर्वांग पूर्ण सुव्यवस्थित व्याकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जब महर्षि पाणिनि ने 3996 सूत्रों से समन्वित 8 अध्यायों से संबलित अष्टाध्यायी संज्ञ ग्रंथ की रचना की। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी गागर में सागर वाली उक्ति को चरित्रार्थ करने वाला ग्रंथ है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 32 पादों में विभक्त है। लौकिक संस्कृत के साथ ही साथ वैदिक भाषा का भी विवेचन पाणिनि की दृष्टि से नहीं बचा है। अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने विस्तृत भाष्य की रचना की है, जिसे महाभाष्य संज्ञा से विभूषित किया गया है। कात्यायन ने वार्तिक लिखकर पाणिनि की दृष्टि से कतिपय ओझल तथ्यों का स्पष्टीकरण कर दिया है। इस प्रकार इन 3 मुनियों पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को पाकर व्याकरण शास्त्र परिपूर्णता को प्राप्त कर लिया है। आचार्य वररुचि के अनुसार रक्षा, ऊह, आगम, लघु तथा असंदेह ये व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। रक्षोहागमलत्वसंदेहा प्रयोजनम। वेदों की रक्षा पद, वर्ण, मात्रा के स्वरूप ज्ञान से संभव है। उह का अर्थ है नूतन पदों की कल्पना। आगम का ज्ञान भी व्याकरण के अध्ययन के अभाव में असंभव है, अतः व्याकरण शास्त्र का अध्ययन वेदों के ज्ञान के लिए नितांत स्पृहणीय है। निरुक्त, सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, अर्थात वेदार्थ बोध के लिए स्वतंत्र रूप में कठिन शब्दों में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करके अर्थ निर्धारण करने वाला शास्त्र निरुक्त कहा जाता है। वस्तुतः निघंटु नामक वैदिक क्लिष्ट पदों के संग्रह की व्याख्या निरुक्त है। निघंटु में उन वैदिक पदों का एकत्र संकलन किया गया है जिनमें सरलता से प्रकृति और प्रत्यय का ज्ञान नहीं हो पाता। महाभारत के एक उल्लेख के अनुसार निघंटु के रचनाकार का नाम काश्यप है। निघंटु शब्द की व्युत्पत्ति प्राय इस प्रकार की जाती है, निश्चयेन घटयति पठति शब्दान इति निघंटुः। निघंटु 5 अध्यायों में विभक्त है, प्रथम 3 अध्यायों में एकार्थक, चतुर्थ में अनेकार्थक तथा पंचम में देवतावाचक विशिष्ट शब्दों का संग्रह है। निघंटु के शब्दों की संख्या 1341 है। संप्रति उपलब्ध निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। कतिपय विद्वान निघंटु को भी इन्हीं की रचना मानते हैं। यास्क ने निघंटु के प्रथम 3 अध्यायों की व्याख्या निरुक्त के प्रथम 3 अध्यायों में की है। निघंटु के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या निरुक्त के अगले 3 अध्यायों की है। निघंटु के पंचम अध्याय की व्याख्या निरुक्त के अवशिष्ट 6 अध्यायों में की है। निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं तथा अंत के 2 अध्याय परिशिष्ट हैं। इसमें भी 3 कांड हैं। निघंटु के व्याख्याकार के रूप में देवराज यज्वा का नाम भी प्राप्त होता है। शरणाचार्य ने क्षीर स्वामी तथा अन्य कई आचार्यों का नाम निघंटु के व्याख्याकारों के रूप में उल्लिखित किया है। निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार के रूप में दुर्गाचार्य का नाम विख्यात है। स्वयं यास्क ने अपने से पूर्ववर्ती अनेक निरुक्तकारों की सत्ता स्वीकार की है। कतिपय विद्वानों के अनुसार यास्क 14वें निरुक्तकार हैं। यास्क के अनुसार अन्य निरुक्तकारों के नाम इस प्रकार हैं: अग्रायण, औपमन्यव, औदुम्बरायण, औरणनाभ, काथक्य, क्रौष्टुकी, गार्ग्य, गालव, तैटिकी, वार्षायणी, शाकपूणी तथा स्थौलाष्ठीवी। निरुक्त में कठिन वैदिक शब्दों की भी उत्पत्ति दी गई है तथा यह बतलाया गया है कि कौन सा शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में क्यों रूढ़ हो गया है। निरुक्त का विषय है वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश तथा धातु का उसके अर्थातिशय के साथ योग। वर्णगमो वर्ण विपर्यश्च द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशौ धातोस्तदर्थातिशयेन योगो तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। निरुक्तकार सभी शब्दों को धातुज अर्थात धातु और प्रत्ययों की योग से उत्पन्न मानते हैं। वैदिक देवताओं के विषय में भी निरुक्त में विवरण प्राप्त होते हैं। यास्क के अनुसार देवताओं के 3 वर्ग हैं: पृथ्वी स्थानी देवता, अंतरिक्ष स्थानी देवता तथा द्यूलोक स्थानी देवता। छंद, पाणिनीय शिक्षा में छंद को वेद का पाद बतलाया गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य, जिस प्रकार पैरों के बिना किसी जीवधारी की गमन क्रिया असंभव है, उसी प्रकार वेद मंत्रों का पाठ छंदो ज्ञान के अभाव में नहीं हो सकता। जहाँ भी पद्यात्मकता होगी वहाँ छंदात्मकता भी अवश्य होनी चाहिए। सर्वानुक्रमणी नामक ग्रंथ में कात्यायन ने स्पष्ट कहा है, यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात छंद से यह ज्ञान होता है कि मंत्र का पाठ कितने अक्षर परिमाण में किया जाना चाहिए। संपूर्ण ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्वेद पद्यमय है। इनके पाठ की व्यवस्था छंद पर आधारित है। संभवतः इसलिए छंदस शब्द वेद का पर्याय बन गया है। छंद का मुख्य प्रयोजन है भाषा का लालित्य। गद्य को सुनने से मन को वह तृप्ति नहीं मिलती जो पद्य को सुनने से प्राप्त होता है। पद्यों में शीघ्र स्मरण होने का गुण भी रहता है। वेदाध्ययन में छंदों का अत्यधिक महत्व है। छंदों के ज्ञानाभाव में वेदाध्ययन पाप माना जाता है। कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका में 7 छंदों का उल्लेख हुआ है, गायत्री, उष्टिक, अनुष्टुप, बृहती तथा पंक्ति। गायत्री छंद 3 चरणों का होता है। इसमें कुल अक्षरों की संख्या 24 होती है। उष्टिक 28 अक्षरों का छंद है, अनुष्टुप 32 अक्षर, बृहती में 36 अक्षर, पंक्ति में 40 अक्षर, त्रिष्टुप में 44 अक्षर तथा जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। कात्यायन ने इस 7 छंदों के अनेक भेदों को स्वीकार किया है। वैदिक छंदों का सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ कात्यायन की सर्वानुक्रमणी है। पिंगल रचित छंद सूत्र भी वैदिक छंदों का सर्वांग पूर्ण विवेचन करने वाला ग्रंथ है। यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभक्त है। उल्लेखनीय है कि प्रायः सभी वैदिक छंद आक्षरिक हैं तथा उनके अनेक भेद प्रभेद किए गए हैं। लौकिक छंदों का विकास भी वैदिक छंदों के आधार पर हुआ है। ज्योतिष, ज्योतिष का वेद का नेत्र कहा गया है, ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। याज्ञिक विधि विधान के लिए तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु तथा संवत्सर के ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता के लिए वेदांग ज्योतिष का अध्ययन अपरिहार्य है। वेदांग ज्योतिष से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक याजुष ज्योतिष जिसका संबंध यजुर्वेद से है, 2 ऋक् ज्योतिष जिसका संबंध ऋग्वेद के साथ है। वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ का प्रणयन लगध नामक विद्वान ने किया है। इसमें 27 नक्षत्रों की गणना कराई गई है। परवर्ती काल में वराह मिहिर ने सूर्य सिद्धांत ने विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बाद में चलकर वराह मिहिर के सूर्य सिद्धांत ने विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। बाद में चलकर ज्योतिष और गणित, ज्योतिष कालांतर में इसके होरा, गणित संहिता, प्रश्न और निमित्त, इन पांच अंगों का विकास हुआ। वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष को वेद का सर्वोत्तम अंग स्वीकार किया गया है। मयूरों की शिखा तथा सर्पों की मणि की भांति ज्योतिष भी वेदांगों का सिर मौर है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थितम। इसी ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि ज्योतिष का जानकार व्यक्ति ही यज्ञ करे, क्योंकि तैतृय आरण्यक में कहा गया है कि ब्राह्मण को वसंत ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में तथा वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। कुछ यज्ञ सायंकाल में, कुछ प्रातःकाल में, कुछ विशिष्ट मासों एवं विशिष्ट पक्षों में किए जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस काल विधान शास्त्र को जानता है वही वेद को जानता है। वेदा ही यज्ञार्थम अभी प्रवृत्ता कालाति पूर्वा विहिताश यज्ञ तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम।